सहनावतु सहनौ नरतु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
आज हम लोग पांचवा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पांचवा अध्याय भी अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है और तीसरा अध्याय भी जो है एक प्रश्न से शुरू हुआ था। तीसरे अध्याय का प्रश्न और पांचवें अध्याय का प्रश्न अगर देखा जाए दोनों एक लगते हैं। तीसरे अध्याय का प्रश्न हम लोग देखें, जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धि जनार्दन है तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। जयसी, अगर आप जो है ज्ञान को कर्म से अच्छा मानते हो, देखो तीसरे अध्याय का प्रश्न कब आता है, भगवान ने दूसरे अध्याय में पूरा ज्ञान दिया, देने के बाद कर्म योग के बारे में भी कुछ बताया, फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में ही बताया, तो ज्ञान भी बताया स्थित प्रज्ञ भी बताया, ज्ञान की प्रशंसा भी की, कर्मयोग भी बताया और उसके बाद में जो है भगवान कहते हैं कि उठो लड़ो। तो अर्जुन का प्रश्न वहां यह था कि अगर ज्ञान कर्म से बेहतर है तो आप मेरे को ये घोर कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। मगर ये डाउट उसको क्यों आ रही हुआ, इसको अब डाउट इसलिए आ रही हुआ कि दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान एक कुछ कह के गए। कई बार होता है ना, हम लोग का माइंड थोड़ा ऑफ हो जाता है फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है, तो बाय दैट टाइम 39 श्लोक निकल गया। तो 39 श्लोक में क्या था, वहां पर सेकंड चैप्टर के 39 श्लोक में था, ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगम तिमाम। सुनो, अभी तक मैंने आपको सांख्य बता दिया, आत्मज्ञान खत्म हो चुका है अर्जुन, अब तुम जो है बुद्धि योग मतलब यहां कर्म योग की बात बताने जा रहे हैं। बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसी, अगर आप जो है कर्म योग करोगे तो बंधन नहीं होगा, बंधन से छूट जाओगे, ऐसा भगवान ने कहा। मगर ये पॉइंट जो है अर्जुन स्किप कर गया, भूल गया, उसको समझ में नहीं आया। तब वो कहता है कि मेरे को बताओ, अगर ज्ञान अगर बेहतर है कर्म से तो मेरे को ये घोर कर्म करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं। व्याम श्रेण वाक्य न बुद्धि मोयसी भी, मैं आपने जो है दोनों की प्रशंसा कर दी है, वहां कर्म की भी प्रशंसा की है और आप जो है ज्ञान की भी प्रशंसा की है। सो आई एम कंफ्यूज, मोहित हो गया, डेल्यूशन हो गया मेरे को, तो मेरे को एक बात बताओ, दो में से एक बात बताओ मेरे को क्या करना है। अच्छा, तो भगवान ने फिर तीसरे अध्याय में कहा कि तुमको कर्मयोग करना है, सीधा सीधा कह दिया, सीधा कह दिया कर्मयोग करना है। चौथे अध्याय में भगवान ने क्या किया कि आपको सम्यक दर्शन करना है। सम्यक दर्शन क्या है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्म, याद है आपको उसका हमने क्या वर्ड दिया था, सम्यक दर्शन, सब जगह ब्रह्म को देखना है, ये सम्यक दर्शन है। अगर आपका सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो फिर क्या कहा आपको करने के लिए, आप बताएंगे क्या कहा था, 12 यज्ञ करने के लिए कहा था। जो बिगिनर हैं, जो ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी सम्यक नहीं देख पाते हैं, उनको कहा था कि आप 12 किस्म के यज्ञ जो हैं वो करो। और हमने ये भी देखा था ये 12 यज्ञ जो हैं सारे जो है परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स के साथ में रिलेटेड हैं, तो 12 यज्ञ के बाद में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में भगवान ने यह भी कहा था कि आपको कर्म में अकर्म देखना है और अकर्म में कर्म देखना है। कर्मणि अकर्म या पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। आप जब काम करते हो तो अकर्ता आत्मा को देखो, कर्म में अकर्म देखना। और आप अगर कुछ कहो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो यह अकर्म हुआ, मगर इसमें कर्तृत्व है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो उसको देखना है। तो भगवान ने चौथे अध्याय में ज्ञान के बारे में भी क्लैरिटी दी और कर्म के बारे में भी उन्होंने कहा, संन्यास के बारे में भी कहा। तो दो किस्म के सन्यासी की बात वहां पर कही गई है चौथे अध्याय में। एक सन्यासी होता है कि जो केवल अपने शरीर के लिए कर्म करता है, निराशी यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न अपनोति किल्विषम। एक ऐसा ज्ञानी है जो कुछ नहीं करता, केवल शरीर के लिए अपनी गुफा में बैठा हुआ है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के सन्यासी होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी एक निवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी वो जाके उसका प्रचार करेंगे, निवृत्ति मार्गी बैठे रहेंगे, जैसे ठाकुर रामकृष्ण निवृत्ति मार्गी एक जगह बैठे रहे, तपोवन महाराज एक जगह बैठे रहे, निवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी विवेकानंद स्वामी चिन्मयानंद ये प्रवृत्ति मार्गी हैं। तो जो निवृत्ति मार्गी हैं वो क्या है, निराशी, कोई आशा नहीं है, कुछ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यत् चित्तात्मा उन्होंने अपने सर्व अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। त्यक्त सर्व परिग्रह नो पोजेशंस। आप हिमालय की गुफा में जाके देखो, तपोवन महाराज की कुटिया जाके देखो, कुछ नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, कोई पोजेशंस नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नापनोति कर्म, वो केवल शरीर के लिए अपने भोजन के लिए शरीर बना रहे, केवल उसके लिए वो खाना वाना का जो करना है वही करते हैं, तो उनको कोई पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता, कोई बंधन नहीं होता कर्म का। अच्छा, तो दूसरे किस किस्म के हैं, तो दूसरे प्रवृत्ति सन्यासी हैं, जो प्रवृत्ति बहुत काम करते हैं। उनका है त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्र है कर्मण्य अभिप्रितो भी नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फलासंग, उन्होंने कर्तृत्व भी छोड़ दिया है, उसके फल का संग भी छोड़ दिया है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमको ऐसा फल मिलना चाहिए, नित्य तृप्त है, उनकी अपनी कोई कामना नहीं है, सेल्फिश डिजायर नहीं है, दूसरों के लिए काम करते हैं। निराश्र किसी के ऊपर में कोई डिपेंडेंट नहीं है, निराश्रय यहां पर आश्रय रहित कहा, जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है उसका नाम आश्रय है। ऐसे इस लोक और परलोक के इष्ट फल साधन रूप आश्रय से जो रहित है, जो कुछ नहीं चाहता है, इस लोक में भी नहीं चाहता है और परलोक में भी नहीं चाहता है, वो आश्रय रहित है। कर्मण्य अभिप्रतोपी, वो बहुत कर्म करता है, बहुत कर्म करता है, नैव किंचित करोति स, मगर वो कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कर्ता भाव नहीं है, पहले ही उसने कर्ता भाव को छोड़ दिया, कर्म फल से उसका संग नहीं है, उसको नित्य तृप्त है, उसे कुछ नहीं चाहिए। और निराश्रय मतलब वो आशा नहीं करता कुछ किसी चीज की, मतलब फल की कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, यहां या इस लोक के बाद में जब जाएगा उसकी भी कोई आशा नहीं है, कोई भी उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और निराशी यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवल कर्म, ये भी हम लोगों ने देखा। तो भगवान जो है इस अध्याय के अंत में जाके कहते हैं कि आपको क्या करना है, भगवान ने कहा कि आपको कर्मयोग करना है, नंबर वन। लास्ट श्लोक में जाके भगवान बताते हैं कि कर्मयोग करो, एवं दूसरा ज्ञान से सारे संशय को दूर करो और आत्मा में स्थित हो। योग संन्यस्त कर्मानं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतन न कर्मानी निभगंती धनंजय। अगर हमें कर्म से बंधना नहीं है तो हमें ये तीन चीजें करनी है। पहला क्या है? योग संन्यस्त कर्मानं, कर्मयोग करना है। कर्मयोग क्या है? मेरी खुशी के लिए जो हम काम करते हैं भगवान की खुशी के लिए जो काम करते हैं वो कर्मयोग होगा। और ज्ञान संचिन्न संशयम, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब सारे संशय चले जाते हैं। जीव जगत ईश्वर के बारे में जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सारे के सारे ज्ञान से सब खत्म हो जाते हैं। आत्मवंतन, आत्मवंतन आत्मा में स्थित है, आत्मवंतन। न कर्मानी निभृणती धनंजय, उसको कोई कर्म बांधता नहीं है, कोई कर्म नहीं बांधता। अच्छा, भगवान ने ऐसा भी कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको याद है? तत्पर है संयत इंद्रिय, श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद में तत्पर, तत्पर मतलब तत्पर मतलब क्या? मैंने शंकराचार्य जी से पढ़ के सुनाया था आपको, तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु सुसुसु आदि उपायों से जो अच्छी प्रकार लगा हुआ है। मैंने स्पेसिफिकली पढ़ दिया था, क्या करूं, गुरु की सेवा करनी होगी। तत्पर संयत इंद्रिय, आपके पास श्रद्धा है, आप तत्पर भी हो मगर इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, गिर जाओगे आप। ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति, ज्ञान से क्या मिलेगा आपको? शांति मिलेगी। कितनी देर में मिलेगी? अचिरेण, तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद ने फिर बताया कि जो जिसको श्रद्धा नहीं है, अज्ञ, अज्ञ मतलब इग्नोरेंट, अश्रद्धानश्च जिसको कोई श्रद्धा नहीं है, संशय आत्मा बराबर जो उसको संशय होता रहता है, पता नहीं है क्या सोचता है वो, पेंडुलम की तरह। गीता क्लास में आया, अरे हमारे दोस्त सब पार्टी कर रहे हैं देखो, और जब पार्टी में जाता है तो सोचता है कि हमारे दोस्त सब गीता क्लास में गए हैं तो ऐसे लोग का क्या होता है? नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मा। अब वो भोग में बैठा है, वह नहीं हुई उसको इंजॉय कर पा रहा है, यहां क्लास में बैठा है उसको भी नहीं इंजॉय कर रहा, वो भोग की चिंता कर रहा है। तो योग और भोग के अंदर वो बराबर ऐसे कंटिन्यूअसली संशय आत्मा घूमता रहता है, तो उसको यहां भी सुख नहीं मिला, बाद में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने का है उसको। संशय आत्मा विनश्यति। अब पांचवें अध्याय का जो प्रश्न है ना, वो तीसरे अध्याय के तरह सिंपल अगर हम कहें तो, अगर नहीं बताएं तो आपको समझ में कभी नहीं आएगा, कोई फर्क ही नहीं नजर आएगा। आप सोचेंगे क्या है, अर्जुन ने वैसे फिर प्रश्न कर दिया, ऐसा प्रश्न तो तीसरे अध्याय में शुरू किया था, पांचवें अध्याय में आके फिर वही वही प्रश्न है, ऐसा क्या बात है? दोनों प्रश्न में फर्क है, और इस फर्क को जानने के लिए आपको थोड़ा सा संन्यास के बारे में जानना होगा। संन्यास जो है वैराग्य के ऊपर में निर्भर करता है, कितना आप वैराग्य हैं उस किस्म का संन्यास होता है। जैसे आपका अगर मंद वैराग्य है, हम लोग सबको होता है मंद वैराग्य, क्या क्लासिक एग्जांपल है मंद वैराग्य के? शमशान में जाना, एक ये मंद वैराग्य है। दूसरा वैराग्य प्रसव पीड़ा के बाद में हर जो है मां बोलती है बस लास्ट चाइल्ड, वो भी वैराग्य कितना है? थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद में फिर नॉर्मल सब हो जाता है,
प्रसव वैराग्य,
दैट इज कॉल्ड ए मंद वैराग्य इसको। उसके बाद एक तीव्र वैराग्य होता है। तीव्र वैराग्य क्या है? कि मेरे को इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, यहां से मैं उब गया हूं, इतना दुख हमने भोग लिया है और नहीं चाहिए कुछ हमें यहां से, मगर स्वर्ग जाना चाहता हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो ऐसे लोग उपासना करते हैं, हायर लोक में जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं। इस किस्म के लोगों के अंदर दो किस्म के सन्यासी होते हैं, एक को कहते हैं कुटीचक और दूसरे को कहते हैं बहुतक। कुटीचक क्या होता है, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो एक ही जगह में बैठा रहता है, उसको कुटीचक कहते हैं, एक कुटिया में बैठा हुआ है। बहुतक जो भिक्षा के लिए, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा है। कुटीचक कौन होगा, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत जगह जाके भिक्षा नहीं मांग सकता, उनको वैराग्य है, वो उपासना करते हैं, उनको जो है आत्मज्ञान नहीं चाहिए, उनको हायर लोक में जाना है, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए उनको। तो एक मैंने आपको मंद वैराग्य कहा, दूसरा कहा तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य के अंदर एक कुटीचक कहा और एक बहुधक सन्यासी कहा। अब तीव्रतर वैराग्य होता है, तीव्रतर और ज्यादा वैराग्य है, उसके अंदर दो किस्म के होते हैं, एक हंस होता है, दूसरा परम हंस होता है।
याद
रखिएगा ये सब, हंस परम हंस। हंस को क्या चाहिए, उसको ज्ञान यहां नहीं चाहिए, वो ब्रह्मलोक जाना चाहता है, वहां से उसको क्रम मुक्ति मिलेगी। आपको ये वर्ड याद आया क्रम मुक्ति, था बोला ना कैवल्य उपनिषद में पढ़ा था। हंस सन्यासी यहां पढ़ना नहीं चाहता, यहां पर ज्ञान नहीं लेना चाहता है, वो ब्रह्मलोक में जाके वहां पर वो ज्ञान लेगा, वो हंस सन्यासी हुआ। एक दूसरा होता है परम हंस सन्यासी। परम हंस सन्यासी के अंदर दो किस्म के होते हैं।
चार्ट बनाओ।
आपको जस्ट दो प्रश्न को समझाने के लिए इतना पीछे बैकग्राउंड लगता है, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। परमहंस के अंदर दो किस्म के होते हैं, एक होता है विद्वत सन्यास और एक होता है विविदिशा सन्यास। विद्वत सन्यास क्या है, विद्वत सन्यास है कि हमने यहां पर श्रवण किया, मनन किया, निधि ध्यासन किया और हमें अपरोक्ष अनुभूति होगी। क्या समझे आप, विद्वत सन्यास श्रवण किया, मनन किया, निधि ध्यासन किया और निर्विकल्प समाधि के अंदर हमारी अपरोक्ष अनुभूति हो गई। ऐसे व्यक्ति का विदेह मुक्ति हो जाती है, दूसरा जन्म नहीं होगा। और इसके एग्जाम्पल हैं याज्ञवल्क, रामकृष्ण, तपोवन महाराज, रमन महर्षि। विद्वत सन्यास, विद्वत सन्यास का मतलब हुआ कि इन्होंने श्रवण मनन निधि ध्यासन करके अपरोक्ष अनुभूति कर ली है, इसके बाद सन्यास लेते हैं। क्या समझे, श्रवण मनन निधि ध्यासन हो गया, हमारी अपरोक्ष अनुभूति हो गई, अपरोक्ष अनुभूति के बाद में अब उन्होंने सन्यास लिया। क्यों लेते हैं उसके बाद सन्यास? देखो, श्रवण मनन निधि ध्यासन और अपरोक्ष अनुभूति में प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड चाहिए, मगर उससे और ज्यादा मन को अगर शुद्ध करना है तो हमको उसके बाद में फिर और चेष्टा करनी होती है। तो विद्वत सन्यासी जो है जीवन मुक्त बनने के लिए वासना क्षय और मनोनाश, ये दो स्टेशन और पार करता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। विद्वत सन्यास, श्रवण मनन निधि ध्यासन किया, अपरोक्ष अनुभूति हो गई, अपरोक्ष अनुभूति जिसकी हो जाती है उसका विदेह मुक्ति हो जाती है, उसको नया देह और नहीं मिलेगा। अब ऐसा व्यक्ति जैसे हमारे तपोवन महाराज जो है, उन्होंने सन्यास लिया ज्ञान के बाद, ये सिंपल एक सेंटेंस में समझ लीजिए, ज्ञान होने के पश्चात जो लोग सन्यास लेते हैं उसको कहते हैं विद्वत सन्यास। विद्वान बन गए हम, ज्ञान हमें हो गया, उसके बाद हम सन्यास ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, कुछ और स्टेप्स हैं जो हमने दो वर्ड आपको बताए, मनोनाश और वासना छह के लिए वो करते हैं। दूसरा संन्यास क्या है? विविदिशा संन्यास। पेतुम इच्छा, मेरे जानने की इच्छा है। किसको जानने की इच्छा? तत्व तो जानने की इच्छा है, इसलिए मैंने संन्यास लिया। संन्यास लेके अब मैं अब श्रवण कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं, निधि ध्यान कर रहा हूं, दुनिया के कोई काम नहीं कर रहा हूं। आया समझ में? विविदिशा संन्यास, विविदिशा मेरे जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, इसलिए हम सब कुछ छोड़ दिया, हमने सांसारिक काम छोड़ दिए, अब हम श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए एक जगह बैठ गए। सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे 2 साल का वेदांत कोर्स, समझे? अगर आप लोग को कभी याद देखा हो तो विवेक चूड़ामणि की जब आप देखते हैं ना वीडियो गुरुदेव की, तो आपको देखेंगे सबको पीले वस्त्र पहनाए हुए हैं। देखा कभी आपने? जितने भी सुनने हैं, उनको देते थे कि अभी 7 दिन का, 30 दिन का तुमको संन्यास, तुम यहां बैठो, यहां अभी विवेक चूड़ामणि सुनो। 7 दिन के ज्ञान यज्ञ में गुरुदेव आगे ऐसा करते थे, 7 दिन का कोई चिंता नहीं करना है, तुम बैठो सुनो, ये तुमको अभी हम दे दिए हैं, ब्रह्मचारी हो अभी। तो वो क्या संन्यास कहलाता है? विविदिशा। वेत्तुम इच्छा, मेरे को जानने की इच्छा है। अच्छा, विविदिशा संन्यास का भी जो है, संन्यासी जो होता है, जिसको जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, श्रवण मनन निधि ध्यान करके अपरोक्ष अनुभूति हो गई, उसकी भी विदेह मुक्ति होती है। तो परमहंस जो है उसकी विदेह मुक्ति है गारंटेड, परमहंस जो है उसकी विदेह मुक्ति गारंटेड है, चाहे वो विद्वत सन्यासी हो या विविदिशा सन्यासी हो। चैप्टर 3 का जो प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अर्जुन अपने आप को विद्वत सन्यासी समझने लगा, वहां जो ज्ञान की बात हो गई है, वो समझता है कि मैं अब विद्वत सन्यासी हूं, मेरे को यहां से छोड़ के कहीं पहाड़ में जाके मैं मेडिटेशन करूं, ऐसा उसका विचार था। पहले अध्याय में उसने ऐसा कहा भी कि मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। तो वो प्रश्न है कि विद्वत संन्यास और कर्म योग के अंदर कौन सा मेरे लिए अच्छा है, ये प्रश्न भगवान को किया था उसने। भगवान ने कहा तुम्हारी तो अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई है। समझ में आया? विद्वत संन्यास के अंदर अपरोक्ष अनुभूति नहीं है तो तुम क्या विद्वत संन्यास की बात करता, तुमको कर्मयोग करना होगा। इसलिए 3रे अध्याय में भगवान ने कहा कर्मयोग करो। अब 5वें अध्याय के प्रश्न से उसका क्या डिफरेंस आता है वो हम देखते हैं, प्रश्न को हम लोग पढ़ें अब जरा।
अथ पंचमोध्यायः, अथ पंचमोध्यायः, अर्जुन युवाच,
अर्जुन युवाच,
सन्यासं कर्मणां कृष्ण,
सन्यासं कर्मणां कृष्ण,
पुनर्योगं च शंससि, पुनर्योगं च शंससि, यच्छ्रेय एतयोरेकं,
यच्छ्रेय एतयोरेकं,
तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। अर्जुन युवाच, सन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि, यच्छ्रेय एतयोरेकं, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्।
अर्जुन उवाच, अर्जुन का प्रश्न है, सन्यासं कर्मणा, कर्म का सन्यास, संन्यासम कर्म ना मतलब कर्म का संन्यास, कर्म नहीं करेंगे हम। कृष्ण पुनर्योगम च संसति, एंड एट द सेम टाइम आप जो है कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हो, तो कर्म संन्यास की भी आपने प्रशंसा की पिछले अध्यायों के अंदर, और कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हो आप। यत्सेत एतयोर एकम, इन दो में से कौन सा मेरे लिए ठीक है, ये एक जो है तन्मे ब्रूहि सुनिश्चय, ठीक से बताओ, एक बताओ। आपको याद होगा कि हमारा चौथे अध्याय के अंदर ज्ञान कर्म संन्यास योग था, ये नाम अध्याय का, तो उसमें कर्म संन्यास के बारे में भगवान ने उसकी प्रशंसा की कि कर्म का संन्यास कैसे करना है, जिससे वो कर्म आपको बांधे नहीं। बहुत उपाय उन्होंने बताया ना, ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान में स्थिति कैसी है, कर्तृत्व कैसे छोड़ना है, ये सब बातें भगवान ने डिटेल में वहां बताई। अच्छा देखो, हम लोग सबको ज्ञान और संन्यास जो पसंद है, कर्मयोग करने को आप बोले नहीं, संन्यास सबसे आगे पसंद है, काम नहीं करना पड़े। अच्छा सबकी इच्छा ऐसी होती है, क्यों होती है ऐसी सबकी इच्छा? क्योंकि शरीर तमोगुण से बना हुआ, आपको याद है पिंड और ब्रह्मांड तमोगुण के मिश्रण से बना हुआ है, तो ये शरीर बराबर जो है वो चाहता है बैठे रहो, चुप से सोते रहो, बैठे रहो, काम करने को मत बोलो। इसलिए हमारे बच्चे भी काम करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि तमोगुण प्रधान होता है। तो संन्यास मार्ग में क्या है? बोले कर्म नहीं करना है, व्यावहारिक कर्म या दूसरे जो कर्म है वो नहीं करने हैं संन्यास कर्म के अंदर, और कर्म योग के अंदर कर्म करना है। तो यहां पर कहता है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, ओ कृष्ण आपने जो है कर्म संन्यास की भी प्रशंसा की है, पुनर्योगम च संसति और योग की भी प्रशंसा कर रहे हो, तो आप दोनों में से एक बताओ मेरे को। तो यहां पर जो है ये कर्म संन्यास जो है विविदिशा संन्यास को कहता है, वहां विद्वत संन्यास था और कर्म का डिस्टिंक्शन बता रहे थे, तो भगवान ने कहा तुमको कर्मयोग करना है, तुम्हारी अपरोक्ष अनुभूति नहीं है, तुम विद्वत संन्यासी नहीं हो, तुम अपरोक्ष अनुभूति तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम उसके लिए लायक नहीं हो। अब यहां वो पूछ रहा है कि विविदिशा संन्यास श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए क्या मैं काम छोड़ दूं, कर्मयोग करूं, तो कौन सा मेरे लिए श्रेय है, मेरे लिए कौन सा अच्छा है? तो भगवान आगे उत्तर देंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो चैप्टर 3 या चैप्टर 5 के प्रश्न एक ऐसा नहीं कहा, इतना डिटेल आपको बताने का मेरा उद्देश्य एकमात्र यही था कि वहां ज्ञान जो है विद्वत संन्यास के ऊपर था, यहां पर ज्ञान जो है विविदिशा संन्यास के ऊपर में है, अदरवाइज प्रश्न एक ही है कि मेरे को अभी क्या करना है, और भगवान फिर कहेंगे तुमको कर्मयोग करना है, फिर कहेंगे उसको कि तुमको कर्मयोग करना है। देखो अगर आपको फल पाना है तो उसके लिए तो प्रयास तो करना होगा, जैसे मान लीजिए आपको आम खाना है, आम का पेड़ है, तो चढ़कर तोड़ना तो आपको पड़ेगा ना, तभी तो फल मिलेगा आपको। उसी तरीके से यहां भी आपको प्रयास तो करना ही होगा। तो रियलाइजेशन के दो पाथ हैं, एक है कर्म संन्यास, दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग से आपको आगे बढ़ना है। अर्जुन का प्रश्न है कि भाई मेरे लिए कौन सा ठीक है। अच्छा आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है पीछे चौथे अध्याय में, निराशी यत्चित्तात्मा तक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कुर्म कुर्वन्ना आपनोति किल विषा। जो आदमी चुप से अपनी गुफा में बैठा हुआ है, केवल शरीर के लिए ही भिक्षा मांगने के लिए जाता है, उसका तो कर्म संन्यास हो गया ना, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा तो सबको अच्छा लगता है। और यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर सम सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबद्धते। उसको जो भी मिल गया उससे संतुष्ट, जो खाना मिल गया संतुष्ट, और द्वंद्व से अतीत है, द्वंद्व मतलब सुख दुख, लाइक डिसलाइक दोनों में बराबर है, विमत्सर है, कोई जेलेसी नहीं है। सम सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा आप ही न निबद्धते, उसने सम कर लिया अपने आप को, इक्विपॉइज कर लिया है। सिद्धि मिले, सक्सेस मिले तब भी ठीक है, असिद्धि मिले, फेलियर भी हो जाए तब भी ठीक है। हम लोगों ने देखा था ना उसमें कैवल्य उपनिषद में, भगवान कहते हैं ये सारी दुनिया मेरा स्पोर्ट है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई हमारा जीवन भी एक लीला ही है, स्पोर्ट है, ये भी एक से गेम, कभी हम जीतेंगे कभी हम हारेंगे। तो अगर हम सम रहे जीत और हार के अंदर, हम आनंद में रहेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, कर्मयोग की भी प्रशंसा की भगवान ने चौथे अध्याय में की, योग संन्यस्त कर्मानाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्मानी निभिघ्नंती धनंजय। देखो कर्मयोग की प्रशंसा करती कि ईश्वर अर्पित कर्म करो, आप ज्ञान से अपने संशय को जो है काट दो, आत्मवंतम आत्मा में स्थित होकर कर्म करो तो आपको कोई कर्म बंधन नहीं होगा। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीन आत्मनः चित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ओ भारत, तुम इस ज्ञान के अंदर स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यत् श्रेय एतो एकम तत्ते ब्रूहि सुनिश्चितम, इन दोनों में कौन सा श्रेय मेरे के लिए, मेरे को एक बताओ। यही अर्जुन का प्रत्यय को तीसरे अध्याय में भी उसने यही कहा था, व्यामिश्र न वाक्य न, आपने दोनों की प्रशंसा कर दी, मेरे को एक बताओ मेरे को क्या करना है। अच्छा, यहां भी वो एक ही बात कहता है, मेरे लिए श्रेय क्या, मेरे को क्या करना चाहिए। देखो यहां श्रेय का मतलब है मेरे मन की पसंद की बात मत करो। अर्जुन ऐसा नहीं कहता है मेरे को ये पसंद है इसलिए मेरे को ऐसा करने को दो, ऐसा नहीं कह रहा हो। अर्जुन कह रहा है मेरा श्रेय, मेरा अच्छा, मेरा भला किसमें होगा वो मेरे को आप बताओ, मेरी पसंद के हिसाब से मत करो। देखो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसके ऊपर जरा ख्याल करो आप लोग। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कर्म संन्यास मतलब कर्म नहीं करना, कर्म योग मतलब दोनों एक साथ हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो कहते हैं भाई मेरे को आप एक बताओ हमें क्या करना चाहिए। देखो कर्म संन्यास क्या है, बहुत सहज तरीके से आप समझ लो, जिसमें 99.5% ऑफ योर टाइम यू आर गिविंग फॉर श्रवण मनन निध्यासन और 0.5% शरीर की रक्षा के लिए आप काम करते हो। कर्म संन्यास का मतलब क्या हुआ, सिंपल सिंपल डिफिनेशन, हम कर्म संन्यास का मतलब है कि आप 99.5% ऑफ योर टाइम यू आर गिविंग फॉर अध्यात्म ज्ञान श्रवण मनन निधि ध्यान, जितना समय आपके पास में है उसमें दिया। 0.5% खाना तो खाना होगा, बस उतना के लिए पेट भरने के लिए आप दिए। कर्म योग क्या है, कर्म मतलब सारा दिन आप काम करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, सारा दिन आपको काम करना है और वहां वहां भी एक काम है, मगर वो काम कौन सा है, श्रवण मनन। ऐसा नहीं काम नहीं करता है, कर्म संन्यास मतलब लौकिक और वैदिक कर्म खत्म हो गए, लौकिक और वैदिक कर्म नहीं करेगा। अच्छा दोनों कर्म सन्यासी और कर्म योगी दोनों ही सम रहते हैं। देखो सिद्धि असिद्धि के अंदर देखो दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही है, सम रहेंगे दोनों। अच्छा दोनों एक साथ नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया, कर्म सन्यास और कर्म योग नहीं कर सकते। उसका मैक्सिम ये है स्थिति गति विरुद्ध, स्थिति गति विरुद्ध मतलब स्टैंडिंग एंड गोइंग कांट बी हैपन एट ए टाइम, स्टैंडिंग एंड गोइंग ऑल्सो दोनों तो नहीं होगा। तो कर्म सन्यासी क्या करता है, कर्म नहीं करता है, लौकिक व्यवहारिक कर्म नहीं करता है, वैदिक कर्म नहीं करता है, वो केवल श्रवण मनन एंड निधिध्यासन। अच्छा भगवान जो है उसका उत्तर देते हैं दूसरे श्लोक में। अब आपको तीसरे अध्याय के प्रश्न और पांचवें अध्याय के प्रश्न के अंदर फर्क मालूम हुआ। तीसरे अध्याय का प्रश्न विद्वत संन्यास और कर्मयोग के अंदर में क्या फर्क है, कौन सा मेरे लिए श्रेय है, तो प्रश्न ही वो नहीं ठीक बैठता है क्योंकि अर्जुन ने अपरोक्ष अनुभूति नहीं की है, उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, उसको कर्मयोग। विद्वत संन्यास का मतलब क्या, श्रवण मनन निधि ध्यासन अपरोक्ष अनुभूति हो गई उसके बाद लोग संन्यास लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया तपोवन महाराज, याज्ञवल्क, रमन महर्षि, ज्ञान हो गया ठाकुर रामकृष्ण, ये उसके बाद में जाके संन्यास लेते हैं, आफ्टर अपरोक्ष अनुभूति संन्यास। अभी भी तीसरा संन्यास, श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए संन्यास लेना, फर्क में आया समझ में कि नहीं आया। तो पांचवें अध्याय का प्रश्न है कि विविधिशा संन्यास, कर्म संन्यास, कर्म संन्यास का मतलब क्या, 99.5% टाइम फॉर श्रवण मनन निधि ध्यासन। जैसे हम लोग 2 साल का वेदांत कोर्स करते हैं वहां पर 24 आवर आपका दूसरा कोई काम नहीं, और विद्वत सन्यासी और विविधिशा सन्यासी दोनों के लिए एक चीज गारंटेड है कि दोनों की विदेह मुक्ति निश्चित है। तयो तु कर्म यहां पर भगवान कहते हैं इसे अध्यात्म भगवान हुआ चाहिए।
श्री भगवान उवाच,
श्री भगवान उवाच,
सन्यास कर्मयोगश्च,
सन्यास कर्मयोगश्च,
निःश्रेयस कराभुवो,
निःश्रेयस कराभुवो,
तयोस्तु कर्म सन्यासात्,
तयोस्तु कर्म सन्यासात्,
कर्मयोगो विशिष्यते,
कर्मयोगो विशिष्यते।
श्री भगवान उवाच,
सन्यास कर्मयोगश्च, निःश्रेयस कराभुवौ,
तयोस्तु कर्म सन्यासात्,
कर्मयोगो विशिष्यते।
भगवान एकदम साफ साफ शब्दों में कहते हैं, संन्यासा कर्म योगच निःश्रेयस करो उभौ, दोनों में जो है निःश्रेयस मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों से ही आपको फल एक है, दोनों का क्या फल है, मुक्ति है, चाहे आप कर्म योग करो चाहे कर्म संन्यास करो मुक्ति आपको मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग चुने हम, कौन सा मार्ग चुने हम, तो यहां पर बताया जाता है कि अपना वैराग्य लेवल देखो, अपना वैराग्य लेवल आपको याद है, मैंने अभी शुरू जब मैं कहा था वैराग्य 3 किस्म के बताए आपको, मंद वैराग्य, तीव्र वैराग्य, तीव्रतर। तीव्र वैराग्य के अंदर हमने बताया आपको कि 2 किस्म के सन्यासी होते हैं, कुटीचक एंड बहुदक, जिनको इस संसार की वस्तु नहीं चाहिए मगर स्वर्ग चाहिए। तीव्रतर वैराग्य के अंदर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक हंस होता है, दूसरा परम हंस होता है। हंस जो है ज्ञान कहां लेगा, हंस जाके ब्रह्मलोक में जाके ज्ञान लेगा, वो क्रम मुक्ति में आ गया। तीव्रतर वैराग्य का एक और अधिकारी है, वो है परमहंस। आपने परमहंस बहुत सुना होगा, वही कई बार सुना होगा। परमहंस के अंदर 2 किस्म के सन्यासी आते हैं, एक विद्वत सन्यासी होता है जिसने श्रवण मनन निधि ध्यासन करके अपरोक्ष अनुभूति ले ली है, और लेने के बाद में फिर वो सन्यास लेता है, जैसे तपोवन महाराज, रमन महर्षि, याज्ञवल्क आदि आदि। दूसरा होता है विभीतिशा संन्यास की बेतुम इच्छा मैं आत्मज्ञान को जानना चाहता हूं इसलिए संन्यास लेता है और अपरोक्ष अनुभूति पाता है। तो ये दोनों के दोनों परमहंस जो हैं, विद्वत सन्यासी हो या विविधा सन्यासी हो, दोनों को ही विदेह मुक्ति मिलती है। तो हमें अपना वैराग्य लेवल देखना है कि क्या मेरे पास इतना वैराग्य है कि मैं कर्म संन्यास ले लूं। कर्म संन्यास का माने मैंने इसको याद रखना होगा, 99.5% टाइम अलॉटेड फॉर ये कर्म संन्यास हुआ। वो कैसे होगा? लौकिक और वैदिक कर्म छोड़ दिया अब हमने, अब हम नौकरी नहीं करते हैं, अब हम कोई रिचुअल नहीं करते हैं, वैदिक कर्म नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम सारा दिन? श्रवण मनन निधिध्यासन। इसको कहते हैं कर्म
संन्यास।
कर्म योग क्या है? जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे, मगर किसकी खुशी के लिए? अपनी खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए करेंगे हम, तब होगा वो कर्म योग। तो अगर हमारा वैराग्य लेवल अगर इतना हाई नहीं है तो हमको कहाँ जाना होगा?
कर्म।
समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? अर्जुन पूछ रहा है कि मेरे को कर्म संन्यास लेना चाहिए कि कर्म योग लेना चाहिए? कहाँ बात हो रही है? बैटल फील्ड में भागना चाहता है, भागना चाहता है वहां से। आपने दोनों की प्रशंसा, कर्म संन्यास की प्रशंसा की है, अपने कर्मयोग की प्रशंसा की है, मेरे को बताओ मेरे लिए कौन सा अच्छा है? देखो दोनों ही हमने बता दिया कि ये मुक्ति के हेतु हैं। मुक्ति का मतलब क्या हुआ? आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक सुख की पर प्राप्ति को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति क्या हुआ? मुक्ति ऐसा नहीं समझना कि मरने के बाद हम मुक्त हो गए बस हो गए। अरे भाई यहां फल मिलेगा, जब आपको ये चीज आपने हाथ में मिल जाए ना तो आप समझना कि हाँ हम मुक्त हो गए। क्या? आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, संसार के दुख और आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं। तकलीफ नहीं देना मतलब दुख आएंगे, ज्ञानी के लाइफ में भी दुख आएंगे, मगर ज्ञानी उससे प्रभावित नहीं होता। और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है इसलिए वो बराबर सच्चिदानंद में रमन करता है, आत्मतृप्त है वो। तो जब आत्म आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाए, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाए, उसको मुक्ति कहते हैं। तयो तू कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। दोनों में, कर्म संन्यास और कर्मयोग में, कर्म योग बेहतर है कर्म संन्यास से। कर्म योग बेहतर है कर्म संन्यास से, क्योंकि वैराग्य लेवल अगर जब आपका चेक करोगे, जब तक वैराग्य लेवल हाई नहीं होगा तब तक कर्म संन्यास नहीं होगा। अच्छा मेरे को बताओ, हम आपको कहें जाओ 2 साल का वेदांत कोर्स करने के लिए, जाओ, जा पाओगे आप लोग? घर बार छोड़ के जा पाओगे? वैराग्य मतलब क्या? अनात्म वस्तु से डिटैच होना। छोड़ पाओगे अपने बच्चों को, घर को, धन को? इसका मतलब वैराग्य लेवल उतना उठा नहीं है। वैराग्य है मगर उतना नहीं है कि आप जो है सब छोड़ते चले जाओ, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारा वैराग्य लेवल अभी कम है इसलिए तुमको कर्मयोग करना होगा। तुम्हारे में राग द्वेष है, तुम्हारे में अभी वासना है, इसलिए कर्म योग से उसको क्षय करना है। अगर ज्ञान पाना है तो कर्म योग करना होगा। हम लोगों ने कई बार कहा है कर्म योग करते करते क्या होता है? चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि जब होगी तब उसके बाद में आप ज्ञान के अधिकारी होंगे। ज्ञान क्या है? श्रवण मनन निधि ध्यासन करना होगा। कर्म योग करते 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 जब वैराग्य थोड़ा सा हाई होगा मन शुद्ध होगा, फिर आप तब आपको श्रवण मनन अच्छा लगेगा। अभी तो कई बार जोर से करना पड़ता है, चलो जाना पड़ेगा, फिर अच्छा लगेगा। हैं, जब अच्छा लगेगा तब ये काम अच्छे नहीं लगेंगे, तब आप इधर आना शुरू करोगे, वैराग्य बढ़ गया है। अच्छा, तो कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है? अब प्रश्न ये होता है कि भगवान जो कहते हैं सबको कर्मयोग करो, अर्जुन को भी कहा कि तुम्हारा वैराग्य अभी हुआ नहीं है, इसलिए तुम कर्म संन्यास के अभी अधिकारी नहीं हो, तुमको कर्मयोग करना होगा। और भगवान ने कह दिया कि भाई कर्मयोग जो है कर्म संन्यास से बेहतर है। क्यों बेहतर है? तीसरा श्लोक,
नियस नित्य संन्यासी, नियस नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यो न देष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते, नियस नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते।
अच्छा, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते, सुखं माने अनायास, आसानी से हो जाएगा। क्या आसानी से हो जाएगा? बंधात प्रमुच्यते, बंधन से मुक्ति हो जाएगी। सुखम, आसानी से। अच्छा, मगर कर्म संन्यास के अंदर वो थोड़ा कठिन है, कर्म संन्यास थोड़ा कठिन है। भगवान बाद में जाके कहेंगे कि कर्म संन्यास बिना कर्मयोग के नहीं होगा, कुछ देर बाद ही बताएंगे भगवान। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग के लिए क्या है? कर्मयोग। हालांकि चौथे अध्याय में कर्म संन्यास की बात भगवान ने कही है, मगर स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा कर्मयोग है। अच्छा, गेय से नित्य संन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति, तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोग के अंदर जो है संन्यास बिल्ट इन है। कर्मयोग के अंदर संन्यास जो है बिल्ट इन है। कैसे है भाई? गेय से नित्य संन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति, वो नित्य संन्यासी है जिसके अंदर न द्वेष है न कोई कांक्षा है, किसी से द्वेष भी नहीं करता है और न कांक्षति, कुछ चाहता भी नहीं है। अच्छा, कर्म संन्यास बिना कर्मयोग के होगा नहीं। कर्म संन्यास, कर्म संन्यास क्या होता है? 99.5 याद रखना होगा, कर्म संन्यास, वर्ड आएंगे बार बार आएंगे, आप घबरा नहीं जाना। कर्म संन्यास मतलब आप ये नहीं समझना कर्म संन्यास आराम से बैठे हुए, ऐसा नहीं है, वहां बहुत खटनी है। श्रवण मनन निधि ध्यासन कोई आसान काम नहीं है। तो कर्म संन्यास का मतलब जहां पर आप 99.5% अपना समय श्रवण मनन निधि ध्यासन में देते हो। कर्म योग करने के बाद में कर्म संन्यास के आप अधिकारी बनते हो। कर्म योग के बाद में कर्म संन्यास के अधिकारी का मतलब आप ज्ञान के अधिकारी बनते हो। क्या समझ में आया आपको? वहां जाने के लिए, ज्ञान के अधिकारी बनने के लिए आपका वैराग्य लेवल और हाई होना चाहिए। आप अपने लौकिक कर्म और वैदिक कर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं कि नहीं, ये देखना है, तब कर्म संन्यास आएगा। अच्छा, तो कर्मयोग में भी संन्यास का तत्व है। क्या तत्व है? ईश्वर समर्पण से हम काम कर रहे हैं ना। कर्मयोग कैसे होता है? सारे के सारे कर्म भगवान की खुशी के लिए है, तो वहां पर त्याग है कि नहीं, संन्यास है कि नहीं? हम तो त्याग कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी का त्याग करके भगवान की खुशी के लिए सब कर्म कर रहे हैं। और न द्वेष्टि न कांक्षति, ये तो दोनों के अंदर है, कर्म संन्यासी के लिए भी है और कर्म योगी के लिए भी है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि कर्मयोग के अंदर भी संन्यास के तत्व छिपे हुए हैं, उसमें भी हैं। जो न द्वेष्टि न कांक्षति वो नित्य संन्यासी है। और कर्मयोग भी न द्वेष्टि न कांक्षति, उसको किसी से द्वेष नहीं है। देखो द्वेष का मतलब क्या है, अगर दुख आया तो दुख से द्वेष नहीं है, दुख का जो हेतु है उससे भी द्वेष नहीं है, दुख जो दे रहा है उससे भी द्वेष नहीं है। और कर्म संन्यास में भी न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद है। इस तरह कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों के अंदर जो है संन्यास के कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट्स हैं, दोनों में है, ये आपको जानना है। अच्छा, जिसमें द्वेष नहीं कांक्षा नहीं जो द्वंद रहित है वो नित्य संन्यासी है, भगवान ने अभी खुद कहा गे, इसको ऐसा जानो। क्या जाने? ऐसा जानो कि जिसके अंदर कांक्षा नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जो द्वंद रहित है वो नित्य संन्यासी है। तो कर्मयोगी क्या है? बोलो वो भी नित्य संन्यासी है। हे महाबाहो, जिस कर्मयोगी में द्वेष नहीं कांक्षा नहीं निर्द्वंद है वह कर्मयोगी भी नित्य संन्यासी है। देखो कर्मयोग भी संन्यासी है, संन्यास कर रहा है ना भाई। कैसा संन्यास है? ईश्वर अर्पित बुद्धि से काम कर रहा है, न द्वेष्टति न कांक्षति उसमें भी है, इसलिए वो संन्यासी है। मगर एक चीज आपको याद रखना होगा कि कर्मयोग और कर्म संन्यास के अंदर में आत्मज्ञान पाने की इच्छा दोनों में बराबर है, ये याद रखना। मगर कर्मयोग और कर्म संन्यास में फर्क क्या है? वैराग्य का फर्क है, वैराग्य के लेवल का फर्क है। कर्मयोगी जो कर्मयोग करना शुरू किया है उसमें भी आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, तब तो उसने कर्मयोग शुरू किया है कि हम ये नहीं करेंगे तो हमें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। और जो कर्म सन्यासी है जो 99.5% टाइम जो है आत्मज्ञान के लिए देना चाहता है वो भी आत्मज्ञान का इच्छुक है, कर्मयोगी भी इच्छुक है और कर्म सन्यासी भी आत्मज्ञान का इच्छुक है। दोनों में आत्मज्ञान की इच्छा ठीक है, एक बराबर है, मगर दोनों के वैराग्य लेवल के अंदर बहुत फर्क है। वैराग्य लेवल कर्म सन्यासी का ज्यादा है और कर्मयोगी का कम है। कर्मयोग करते 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 जब हमारी वासना, जब हमारी आकांक्षाएं जब खत्म हो जाएंगी तो हमारा वैराग्य लेवल बढ़ गया, बढ़ गया तो फिर हम श्रवण मनन निधि ध्यान के लिए तैयार हो गए। कर्मयोग करने के बाद में कर्म संन्यास, देखो संन्यास भर से कंफ्यूज नहीं करना, कर्मयोग के बाद में कर्म संन्यास में श्रवण मनन निधि ध्यान, आया समझ में? श्रवण मनन निधि ध्यान के बाद ज्ञान, स्टार्टिंग पॉइंट कर्मयोग, उसके बाद कर्म संन्यास। कर्म संन्यास का मतलब 99.5% श्रवण मनन निधि ध्यान, उसके बाद में ज्ञान। तो बिना कर्मयोग किए हुए कर्म संन्यास, मगर कुछ लोगों का होता है इसका मतलब उसने कर्मयोग पिछले जन्म में, आया समझ में? जिसने कर्मयोग द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लिया है किसी तरीके से वो श्रवण मनन निधि ध्यान या कर्म संन्यास नहीं कर पाया, बॉडी ड्रॉप कर गई, हो सकता है ना ऐसा? आज हमने मान लो भगवान की बात पर विश्वास करके कर्मयोग शुरू कर दिया, दो चार पांच साल तक हम करते रहे करते रहे करते रहे, तो जितना हम करते रहेंगे तो मन उतना होता जाएगा, उसके बाद में कर्म संन्यास का हमें टाइम नहीं मिला, बॉडी गिर गई। तो ये जो मन जो शुद्ध हुआ है, ये मन जो है सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर के 17 अंगों में से एक अंग है मन। तो ये मन जो है दूसरे शरीर में जब जाएगा तो जितना आपने अभी शुद्ध किया उतना हो गया ना। अब आपका मन शुद्ध है तो आपकी जर्नी वहां से मन शुद्ध होगा कैसे? करना चाहिए कि नहीं? घूम फिर के वहां आ जाते। देखो सारा आपको विज्ञान बता दिया, इसके बाद में करेंगे कि नहीं करेंगे आपकी इच्छा है। देखो अर्जुन का वैराग्य लेवल जो है उतना नहीं है, कितना जितना यदृच्छा लाभ संतुष्टम, जितना हमको मिला उतना ही हो गया, हमको और नहीं चाहिए, वैसा वैराग्य लेवल नहीं है। आत्मन ने संतुष्ट तस् कार्य न वृद्ध, जिसमें आत्मा में तृप्ति आ गई, जो आत्म तृप्त है, आत्म रति कर रहा है, आत्म संतुष्ट है, उस लेवल का वैराग्य उसमें नहीं है, इसलिए उसको अर्जुन को कर्मयोग करना। हम लोग फिर कहां कहें, किस खेत की मूली है हम लोग? अर्जुन तो भगवान से बात कर रहा है, हम लोग तो वहां तक पहुंचे ही नहीं कि भगवान के सामने प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, आज यहीं रुकते हैं, फिर आगे देखेंगे हैं। तो इसको आप लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सके तो फिर से एक बार सुनना, क्लैरिटी आ जाएगी। ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम।